नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2035-36 तक 10 वर्ष के लिए लागू करने की मंजूरी दी। इस पर 28,840 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय आएगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 100 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
उड़ान 2.0, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
श्री वैष्णव ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और उन्हें सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने कल संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेता शामिल हुए। श्री रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि विपक्षी नेताओं के सभी सवालों और चिंताओं का सरकार ने समाधान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। प्रमुख नामों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हत्याकांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। रेलवे ने अपने संचार अवसंरचना को उन्नत करने और कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को कई मंडलों तक पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेल नेटवर्क को मजबूत करना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में लगभग 1,700 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है। एजेंसी ने दुबई में 18 और नई दिल्ली में 2 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी ने बताया कि ये संपत्तियां महादेव सट्टेबाजी एप्लीकेशन के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्रकार और उनके सहयोगियों के नाम पर है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि वो युद्ध केवल अपनी शर्तों और समय सीमा के अनुसार समाप्त करेगा। ईरान ने अपने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेस टीवी पर स्पष्ट किया कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होती, वो अपनी रक्षा के लिए दुश्मनों पर कड़े हमले जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है और प्रभावित देशों को तत्काल मुआवजा देने का आह्वान किया है। जिनेवा में खाड़ी देशों और जॉर्डन द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम नवमी के पूर्व संध्या पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान राम की महान जीवन गाथा हमें सत्य, न्याय और सद्गुण के मार्ग पर चलकर सार्थक जीवन जीने का संदेश देती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।